के भर भाल पर, तन के भर भाल पर विराज रहा मैं, तन के भर भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। मैं प्रकाश पुंज हूँ, अनंत शक्तिवान हूँ, दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, मैं शिव पिता समान हूँ। सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ, सृष्टि का श्रृंगार हूँ, इस जगत का सार हूँ। योनियों में श्रेष्ठ मानव जन्म का आधार हूँ। प्राण धरे तन में संचार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। खोल पुतलियों के पट हो, के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं। तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।
ओम शांति। आज सोमवार की माला का 156वां का है। मैं निरंतर मास्टर ज्ञान सूर्य संसार के लिए वरदान हूँ। अगर हम निरंतर सोमवार की माला बाबा कहते फिरते रहो तो अपनी स्टेज पर अपने आप सेट हो जाएंगे। तो इस श्रृंखला का आज 106वां दिन है। दो दिन शेष बाकी है, उसके बाद फिर 216 दिन का शुरू हो जाएगा। छुट्टी तो ऑलवेज छुट्टी है। तो आज हम देखेंगे ज्ञान सूर्य आत्माओं के लक्षण अथवा प्रधान निमूर्त आत्माओं के क्या लक्षण होते हैं। जितना भी हम क्लासेस सुनते हैं, करते हैं, कराते हैं, तो इससे एक तो ये बेनिफिट होता है कि हमारी चिंतन की धारा निरंतर बहती रहती है। अगर हमने अपने मन बुद्धि को ढीला छोड़ दिया तो धीरे 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 हमारी स्थिति एकदम रुक जाती है अथवा धीरे धीरे गिरने लगती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा चिंतन अगर हम करते रहें तो स्वतः हम ऊँची स्टेज पर पहुँच जाएंगे। तो वरदानी मूर्त आत्माएँ अथवा मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माएं, अगर इस पर हम थोड़ा गौर फरमाएं, चिंतन करें, तो स्वतः उस स्थिति का अनुभव करेंगे। पहले भी सूर्य के बारे में बातें हुई थी कि वो सूर्य हमेशा संपूर्णता की स्टेज पर रहता है। बाबा भी हमेशा हमें मास्टर ज्ञान सूर्य कहकर संबोधित करते हैं। उसमें कोई लकीर नहीं आती है, चंद्रमा के मौफिक नहीं, वो हमेशा अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित है, वो हमेशा चमकता रहता है। तो ऐसे हम सब मास्टर ज्ञान सूर्य आत्माएं हैं, वरदानी मूर्त आत्माएं हैं। जैसे वो सूर्य संसार को रोशनी देने वाला है, हम आत्माएं भी संसार की हर आत्मा को बिना किसी भेदभाव की रोशनी देने वाले हैं। वो सूर्य कभी भेदभाव नहीं करता है, कौन से जाति है, संप्रदाय है, सबको एकल रूप से निरंतर वो देता रहता है। उसका संस्कार ही है देने का। इसलिए बाबा हम सबको संपूर्णता की स्टेज पर स्थित होकर, सूर्य का एग्जाम्पल देकर, हमें अपने कर्तव्यों का बोध कराते हैं। तो हमेशा हमें भी अपनी उस संपूर्णता की स्टेज पर स्थित होकर देने का काम करते रहना है। अगर उस संपूर्णता की स्टेज पर स्थित रहेंगे तो बाकी छोटी छोटी बातों में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। जीवन में आने वाली छोटी छोटी बातें अपने आप ही खत्म होती जाएंगी। तो उस सूर्य की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, पहले हम उस पर थोड़ा चिंतन करेंगे। जैसे वो सूर्य उगता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे लालिमा आसमान में दिखाई देने लगती है और सबको वो आकर्षित करती है। ऐसे जब ज्ञान सूर्य हम सबके जीवन में अवतरित होता है तो हमारे जीवन में भी क्या होता है, अंदर के सारे अंधकार दूर होने लगते हैं और एक रूहानियत की लाली हमारे जीवन में आने लगती है। जैसे वो सूर्य अनेका अनेक किरणें देता रहता है, ऐसे बाबा भी ज्ञान सूर्य बनकर ज्ञान के अनेका अनेक बिंदु, ज्ञान की किरणें हमारे जीवन में, हमारे जीवन कोण से प्रकाशित करते रहते हैं। तो हमेशा हमको उस ज्ञान सूर्य की छत्र छाया के नीचे रहकर उसके साथ का अनुभव करना है। जैसे वो ज्ञान सूर्य हमेशा संपूर्णता की स्टेज पर है सदैव, उसी तरह हमको भी हमेशा संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहना है, ऊंची स्टेज पर स्थित रहना है। जैसे वो सूर्य उगता है खुशी का एक पैगाम लेके आता है, तो उसी तरह हम सभी भी जीवन में हमेशा दूसरों के लिए खुशी का पैगाम लेकर आएं, एक नई उम्मीद की किरण, आशा की किरण, नई ऊर्जा की किरण, नया उमंग उत्साह, नए विचार, नई सोच, नई दृष्टि, नई कृति, नए संस्कार, है जी, फ्रेशनेस। तो हमारा भी एक नई दिनचर्या जो शुरुआत होती है एक नई ऊर्जा के साथ शुरू होनी चाहिए। वो सूर्य किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता है, वो हमेशा देने वाला है। तो हमें भी किसी से अपेक्षा नहीं रखनी है कि किसी से मान शान मिले, कोई हमको पूछे, नहीं। सूर्य स्वतः अपने आप में भरपूर है, वो सबको समान इक्वल रूप से दे रहा है बिना किसी भेदभाव के, और वो स्वयं जलता रहता है और दूसरों को देता रहता है, दूसरों को साकाश देने के लिए, दूसरों को प्रकाश देने के लिए, साकाश देने के लिए सूर्य जो फैलाता है उसे प्रकाश कहते हैं। ज्ञान सूर्य जो फैलाता है उसे साकाश कहते हैं। और हम कौन है, आकाश, तो हम निरंतर साकाश फैलाने वाले हैं। और उस सूर्य की क्या उपमा है, भेदभाव तो हो गया, बिना भेदभाव के कभी नो अब्सेंट, कभी अब्सेंट नहीं होता वो, ना संडे है ना मंडे है, वो हमेशा संडे ही है। तो हमें भी हमेशा संडे बनकर ही रहना है, कोई अब्सेंट नहीं। संडे अर्थात कैसा, हल्का फुल्का, जैसे संडे का नाम आता है या संडे का, संडे के नज़दीक आते हैं तो क्या होता है, हर एक के मन में खुशी होती है। लेकिन इस ब्राह्मण लाइफ में नो संडे नो मंडे, हमेशा ही संडे संडे है। तो उसी तरह से, और दूसरा वो सूर्य डिस्टर्बेंस नहीं होता, नो डिस्टर्बेंस, कुछ भी आता रहे जीवन में, आगे बादल भी आते हैं, बारिश तूफान कुछ भी आए, लेकिन वो अपनी एक स्थिति में मस्त रहता है। कोई कुछ भी कहता रहे, नीचे वाले भले कहते रहें आज बहुत गर्मी है, आज तो सूर्य का प्रकोप बहुत है, अर्थात वो सहन करता है इन चीज़ों, सहन करने की जरूरत ही नहीं है उसको, उसके ऊपर पहुंचती नहीं है चीज़ें, क्योंकि वो हमेशा ऊंची स्टेज पर स्थित है। तो हमेशा हम भी ऊंची स्टेज पर स्थित रहेंगे तो हमारे इर्द गिर्द घूमने वाले या आसपास रहने वाले जो हमारे शुभ भावनाओं से हमारे प्रति शुभ कामना रखते हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, हित चिंतक हैं, भले कुछ भी कहते रहे लेकिन हम उससे अप्रभावित रहेंगे। जैसे वो सूर्य अप्रभावित रहता है ऐसे हम भी अप्रभावित रहेंगे, क्योंकि हाईएस्ट स्टेज पर बैठे हुए हैं। सूर्य को लोग पानी देते हैं ताकि उसका ताप थोड़ा ठंडा हो जाए, हमारा ताप ठंडा हो जाए। तो और उस सूर्य की क्या विशेषता है, डिटैच है वो, साक्षी होके है, माना हमेशा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित है वो, और उसको कोई अपना अहंकार नहीं है, ना उसको उदय होने का अहंकार है, ना अस्त होने का कोई गम है, वो अपनी मस्ती में चलता रहता है। बोर नहीं कभी होता है वो, तो हम देखते हैं लेकिन हमारा दृष्टिकोण ऐसा है ना, तो उसी तरह से उसको किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है कि मैं सबको दे रहा हूँ, नहीं। बल्कि उसकी तरफ सब आकर्षित होते हैं, आकर्षण करने वाला है वो। तो ऐसे ही हम सभी अपने जीवन में मैं और मुक्त से हमेशा निरहंकारी बनकर रहें। तो ये तो सूर्य की विशेषताएं थी। अब देखेंगे वरदान्य मूर्त आत्माओं की विशेषताएं, जो हम चलती फिरती चैतन्य मूर्त वरदान्य मूर्त आत्माएं हैं, मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर, जो भी हमारे इस कर्म क्षेत्र में जितने भी आत्माएं संबंध संपर्क में आती हैं, तो कैसे हमारे जीवन से वो पाठ पढ़ती रहें। तो उसके लिए कुछ एक बातें देखेंगे, 21 बातें देखेंगे कि कैसे हम वरदान्य मूर्त हैं, और वरदान्य मूर्त अगर हैं तो उसकी निशानियां कौन सी हैं। तो सबसे पहले है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना। अगर जो वरदान्य मूर्त आत्मा है, किसी से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं, कोई जीरो एक्सेप्टेशन, हाँ कोई स्वीकृति नहीं किसी प्रकार की, कुछ नहीं चाहिए। जो लास्ट में बताया था ना कल क्लास में, कुछ नहीं चाहिए। इसके साथ में कोई आलस्य नहीं, अलविलापन नहीं, हमेशा अलर्ट मोड पर रहते हैं वरदान्य मूर्त आत्माएं। दूसरा है, किसी प्रकार की बहानेबाजी नहीं, वो आत्माएं वरदान्य मूर्त आत्माएं किसी प्रकार की बहानेबाजी नहीं करेंगी, इसके कारण ऐसा हो गया, इसके कारण वैसा हो गया, नहीं, हमेशा सेवा में तत्पर रहेंगे, वो स्वतः सेवा होती रहेगी। तीसरा है, चिंताओं को हरने वाले, चिंताग्रस्त आत्माओं को चिंताओं से मुक्त करने वाली आत्माएं होंगी वरदान्य मूर्त। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। चौथा है, हमेशा दातापन की भावना होगी, देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं। जैसे बाबा कहते, देना ही लेना है, ना कोई मान सम्मान की इच्छा है, ना कोई किसी वस्तु की इच्छा है, हमेशा दातापन की स्टेज पर। और दूसरों के दुख हरने वाले होंगे, दुख हरता सुख कर्ता की स्टेज पर होंगे। जैसे बाबा हमको टाइटल देते हैं कि तुम बच्चे मास्टर दुख हरता सुख कर्ता हो, तो हमेशा उस स्टेज पर स्थित रहेंगे, मास्टर दुख हरता सुख कर्ता की स्टेज पर स्थित रहेंगे। कौन? वरदान्य मूर्त आत्माएं। नेक्स्ट है, ईगोलेस, कोई अहंकार नहीं कि हमारे में इतना ज्ञान है, हमारा योग का चार्ट अच्छा है। जैसे कल बाबा कहते हैं, मियाँ मिठू नहीं समझेंगे अपने को, दूसरे शब्दों में है ना। तो हमेशा ईगोलेस के स्टेज पर रहेंगे, कोई अहंकार नहीं, निरहंकारीपना। नेक्स्ट है, फरिश्ता स्वरूप की स्टेज पर हमेशा फरिश्ता बनकर विचरण करते रहेंगे। फरिश्ता कहाँ रहता है? अर्श निवासी, देह और देह की दुनिया से परे, उपराम, ऊपर की स्टेज पर रहने वाला, हमेशा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाला, हमेशा सेवा में तत्पर रहने वाला, हमेशा सबको वरदान्य मूर्त बनकर सबको वरदान देने वाला। तो फरिश्ता स्वरूप, जो बाबा ने अभी कौन सी तारीख को मुरली चली थी, उसमें सबको वरदान दिया था, अभी 12 तारीख को फरिश्ता स्वरूप का वरदान दिया था। तो अपने बुद्धि रूपी स्टॉक में क्या रखेंगे? सारे खजानों को संपन्न रखेंगे, अर्थात जितने भी बाबा खजाने देते हैं, सम्मान देते हैं, उस सम्मान में स्थित होकर उसका प्रैक्टिकल अनुभव करने वाले और कराने वाले। तो हमेशा फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में स्थित रहने वाले। नेक्स्ट है, ज्ञान से भरपूर, शुभ भावनाओं शुभकामनाओं से संपन्न। कल की मुरली में था, शुभ भावना शुभकामना किस में और किसकी निशानी बताई थी? वृत्ति, रायल आत्माओं की वृत्ति कैसी होती है? शुभ भावना और शुभकामनाओं से संपन्न। तो वरदान्य मूर्त आत्माएं अर्थात शुभ भावना शुभकामना से संपन्न, स्वयं के प्रति, प्रकृति के प्रति, अन्य आत्माओं के प्रति, सबके प्रति, और ज्ञान से भरपूर। नेक्स्ट है, होली शैडो अर्थात पवित्रता की परछाई, छाया, जहाँ से हम गुजरते जाएँ तो वहाँ से पवित्रता के वाइब्रेशन फैलते जाएँ। तो होली शैडो कौन? वरदान्य मूर्त आत्माएँ। नेक्स्ट है, वो अंतर्मुखी स्टेज पर स्थित रहेंगी। बाह्य मुक्ता क्या है? हमारी शक्तियों को नष्ट करती है। बाह्य मुक्ता हमें अपनी स्टेज से नीचे लेके आती है। बाह्य मुक्ता से हम अनेक प्रकार के व्यर्थ का जैसे आह्वान करते हैं। तो हमेशा अंतर्मुखी स्टेज पर रहने वाले कौन? वरदान्य मूर्त आत्माएँ। नेक्स्ट है, जवाबदार होंगी, वो अपनी जिम्मेवारियों से किनारा नहीं करेंगी। जवाबदारी हमेशा हमको स्मृति रखेगी, और जब जवाबदारी हमको स्मृति में रहती है तो आलस्य अलविलेपन से हम मुक्त हो जाते हैं, कई प्रकार की छोटी छोटी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से मुक्त हो जाते हैं, व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं। कब? जब हम जवाबदारी हमको हमें स्मृति में रहती है कि हमारे कर्तव्य कौन से हैं, सिर दर्द से, पेट से, बुखार से, ये सब चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। और वो चीज़ें होती भी हैं तो बहुत दूर चली जाती हैं। तो जवाबदार आत्मा कौन? वरदानी मूर्त आत्मा है। नेक्स्ट है वो क्या क्यों से परे होंगे, किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं करेंगे, चाहे वो मौसम का है, आज मौसम ऐसा है या आज बीमारी है तो मैं इसे पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। कल बाबा ने क्या बोला था मुरली में, भले कमर टेढ़ी भी है, बुखार भी है, बीमारी भी है, टांगे नहीं चलती, लेकिन बुद्धि तो चलती है ना, लेटे लेटे सेवा करो। कैसे? सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? हाँ, अगर मरने पर भी है, जो नहीं आता उसको उठा के ले आओ। जैसे स्कूल में बच्चे क्या होते थे बचपन में, छोटे छोटे बच्चे अगर स्कूल में नहीं आता था कोई भी टीचर भेजता था घर से उठा के ले आओ, तो घर से बच्चे लेकर आते थे उसको उठा के जबरदस्ती। तो इसी तरह से इस ज्ञान मार्ग में भी हमको क्या करना है, जो नहीं आता उनको उठा के ले आने का, वो बोले चिल्लाता रहे। तो बाबा अर्थात पढ़ाई का इतना महत्व है इस चीज़ का। तो सबसे बड़ी सेवा जो कह रहे थे, मन को बिजी रखना, ये सबसे बड़ी सेवा है। दूसरों को मन को बिजी रखना आसान काम है, वो तो हम होमवर्क दे देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन अपने मन को बिजी रखना, हाँ कमेंट कर दो बिजी हो जाएगा, लेकिन अपने मन को बिजी रखना विधि पूर्वक, नियम प्रमाण मर्यादा पूर्वक, यथार्थ रूप से, ये सबसे बड़ी बात है। जो कल बताया था ना, दिनचर्या में थोड़ा हेर फेर करना है, क्योंकि दिनचर्या से हमको इतना लगाव हो गया, हमको को चेंज नहीं करना चाहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो वास्तव में कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो ही असली कंफर्ट का अनुभव होता है ना। बाहर निकलो थोड़ा और उसमें और मजा आएगा। कंफर्ट जोन में वास्तव में अपने आप को हमने बांध के रखा हुआ है, बहुत प्रकार की उसके उसमें टेंशन है। बाहर निकलेंगे तो नया कंफर्ट जोन तैयार होगा और उसमें हमारा पुरुषार्थ भी बढ़ेगा। तो कहाँ थे हम? क्वेश्चन से क्या क्यों से परे, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट है रियल गोल्ड होंगे वो, अर्थात परिस्थितियां तो आएंगी आएंगी, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, परिस्थितियों में भी अपने आप को मोल्ड करने वाले ही रियल गोल्ड हैं। क्योंकि घर गृहस्थ में रहते हैं, सेवा केंद्र पर रहते हैं या मधुबन में रहते हैं, अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं, कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, तो परिस्थितियाँ तो आएंगी आएंगी, क्योंकि परिस्थितियों के बीज हमने ही बो कर रखे हैं और उनका सामना भी हमको करना है, लेकिन उन परिस्थितियों में हमको मोल्ड होकर चलना है। अर्थात ऐसा नहीं उनके अनुरूप ही ढल जाना है, वहाँ से निकलने का रास्ता निकालना है। अर्थात उन परिस्थितियों को भी हम उनमें निखर कर बाहर निकले, सच्चा सोना बनकर बाहर निकले, तो परिस्थितियों में भी हम रियल गोल्ड बनकर रहेंगे। कब? कौन सी आत्माएं? वरदानी मूर्त आत्माएं। नेक्स्ट है नथिंग न्यू, मैं और मेरे से मुक्त। वरदानी मूर्त आत्माओं को अपनी प्रतिभाओं का, अपनी विशेषताओं का अहम नहीं होगा, वो मैं और मेरे से मुक्त होंगी, मैं और मेरे से मुक्त। नेक्स्ट है न्यारी प्यारी आत्माएं, वो न्यारी भी रहेंगी, प्यारी भी सबकी होंगी, लेकिन आते आते एकदम डिटैच भी हो जाएंगी। जैसे बाबा आते हैं, बाबा मुरली सुनाते सुनाते कैसे डिटैच होते थे, आसपास वाले कहते थे बाबा अभी नहीं जाओ, और बाबा कब के चले भी गए होते थे, उनको पुकारते रहते थे कि अभी दिल भरा नहीं है, लेकिन बाबा का दिल पहले भर जाता था और चला जाता था। तो हम आत्माएं भी न्यारी, जितना न्यारी उतना प्यारी, जितना प्यारे बनने का पुरुषार्थ करना ही नहीं है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ करना है तो शांति से जी नहीं सकेंगे। इसलिए कहा जाता है अगर शांति से जीना है तो लोकप्रियता से बचो, अगर लोकप्रियता का हमने ख्याल रखा तो सारी शांति भंग हो जाएगी। इसलिए शांति से जीना है तो लोकप्रियता से बचना है, अर्थात जितना प्यारा उतना न्यारा, न्यारा ज़्यादा प्यारा कम होना है। नेक्स्ट है वो ओजस्वी होंगे, वाणी में जौहर होगा, किसकी वाणी में? वरदानी मूर्त आत्माओं की, हाँ एकदम दिल में सीधा तीर लगेगा, दिल घायल हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राप्तियों से संपन्न, प्राप्तियों की लिस्ट हमेशा बुद्धि में घूमती रहेगी, जीवन में उदासी कब आती है? अप्राप्ति होती है, जब खालीपन होता है, बुद्धि खाली हो जाती है। इसलिए हमेशा प्राप्तियों की बाबा कहते लिस्ट सामने रखो कि क्या क्या हमको मिला है, तो उसकी लिस्ट बनाने एक स्वयं तैयार करनी है और बना के फॉरवर्ड नहीं करनी, क्योंकि फॉरवर्ड करने से हमारी प्राप्तियाँ खत्म हो जाती हैं, याद ही नहीं रहता क्या क्या प्राप्तियाँ लिख के फॉरवर्ड कर दी, खुद को याद नहीं रहता है। स्वानुभव। नेक्स्ट है, विशेषताओं से संपन्न होंगे और अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाएंगे, विशेषताओं को दबाकर नहीं रखेंगे। और वास्तव में सर्व आत्माएं अनेक प्रकार की विशेषताओं से भरपूर हैं। जैसे कल बताया था 99 भले अवगुण है, लेकिन एक कोई ऐसा गुण है, उस गुण के कारण ही भगवान ने उन आत्माओं को चुना हुआ है, जो हमारे किसी में भी नहीं है, जो औरों में नहीं है। भले वो गुण उसमें जोर से बोलने वाला ही गुण है, वो दूसरे नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जोर से बोलने वाला गुण ही दूसरों को कंट्रोल करके रखेगा। वो जोर से बोलने वाला गुण हम उसको अवगुण के रूप से देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में अवगुण नहीं है, वो गुण ही है। क्योंकि कोई ऐसी वैसी जब बात होती है तो जो उनको कंट्रोल करने वाले, तो उनको जोर से बोलना पड़ता है, और जो बड़े शांति से रहते हैं, एकदम योग युक्त रहते हैं, तो उसमें योग युक्त बात नहीं चलती है, कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो वो एक वो जो हमको अवगुण दिखाई देता है, वो अवगुण नहीं है, वास्तव में वो भी गुण है। इसलिए हमेशा अपनी विशेषताओं को कार्य में लगा, लेकिन ऐसा नहीं हमेशा उनको उल्टे रूप से प्रयोग में लगाना है। हमारा दृष्टिकोण कैसा है वो देखना है। नेक्स्ट है, वो संकट मोचक होंगे, दूसरों के संकट को, दूसरों को संकट में डालने वाले नहीं, दूसरों को संकट से उभारने वाले। या दूसरों को संकट में देखते खुश हो रहे हैं, अच्छा हुआ इसके साथ ऐसे होना चाहिए था, ऐसा नहीं है जी, टांग टूट गई अच्छा हुआ, तो उसकी एक टूटी, अगर हम ऐसा सोचते हैं हमारी दोनों टूट जाएंगी, लेकिन कौन सी, भले ये नहीं टूटे लेकिन बुद्धि रूपी टांगे टूट जाएंगी, काम नहीं करेगी बुद्धि, तो संकट मोचक होंगे। नेक्स्ट है, तपस्वी मूर्त कौन सी आत्मा है? वरदानी मूर्त आत्मा है। तो हमेशा हमको तपस्या में, चाहे वो योग की तपस्या है, चाहे वो कर्म की तपस्या है, चाहे वो बोल की तपस्या है, संकल्पों की तपस्या है, तपस्वी मूर्त होंगे। तो वो भी एक तपस्या के प्रकार लिखने, कितने प्रकार की तपस्या हो सकती है। खाली बैठ के योग लगाना इसको तपस्या नहीं कहा जाता है, तपस्या अनेक प्रकार की हो सकती है। और लास्ट में है, अपकारियों पर उपकार करने वाले होंगे। किसी प्रकार की कोई भी कैसी भी आत्मा है, भले वो आदमखोर है, कल बताया था ना, लेकिन उन पर भी उपकार करने वाले हैं। तो ये थी 21 निशानियाँ। कौन कौन सी? सबसे पहली थी वरदानी मूर्त आत्माओं की निशानी, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे, आलस्य अलवेलेपन से मुक्त होंगे, अहंकार से मुक्त होंगे। दूसरा, बहानेबाजी से मुक्त होंगे। तीसरा, चिंताओं से मुक्त होंगे, अर्थात दूसरे को भी चिंताओं से मुक्त करने वाले होंगे। चौथा, दातापन होंगे और दूसरों के दुख हरने वाले होंगे, दुखहर्ता सुखकर्ता होंगे। नेक्स्ट, ईगोलेस अहंकार से मुक्त होंगे। नेक्स्ट, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में रहेंगे। नेक्स्ट, शुभ भावनाओं शुभ कामनाओं से भरे होंगे, ज्ञान से परिपूर्ण होंगे। नेक्स्ट, होली शैडो होंगे। नेक्स्ट, अंतर्मुखी होंगे। नेक्स्ट, जवाबदार होंगे। नेक्स्ट, क्यों क्या से परे होंगे। नेक्स्ट, बीच में एक दो छूट गया, हाँ वो आगे चला गया, एक्चुअली थोड़ा आगे पीछे हो गया, बीच में होगा, प्यार की मूर्ति बनकर रहेंगे, वो वरदानी मूर्त आत्माएं, छोटी छोटी बातों में अपनी स्थिति को ऊपर नीचे नहीं रख करेंगे, प्यार की मूर्ति बनकर रहेंगे। नेक्स्ट, मैं और मेरे से मुक्त होंगे। नेक्स्ट, न्यारे और प्यारे होंगे। नेक्स्ट, ओजस्वी होंगे, प्रभावशाली बोल। नेक्स्ट है जी, प्राप्तियों से संपन्न होंगे। नेक्स्ट, विशेषताओं से संपन्न होंगे। नेक्स्ट हैं, संकट मोचक होंगे और रियल गोल्ड। नेक्स्ट, तपस्वी मूर्त होंगे, पूरा हो गया, अपकारियों पर उपकार करेंगे। तो ऐसे ये वरदानी मूर्त आत्माओं की निशानियां हैं। अगर हम अपने मन बुद्धि को चिंतन करके रखेंगे तो वरदानी मूर्त स्वतः बन जाएंगे, तो ज्ञान सूर्य की तरह चमकते रहेंगे। और जो सूर्य की विशेषताएं बताई थी, कौन कौन सी थी सूर्य की? सूर्य सदा संपूर्णता की स्टेज पर स्थित रहता है, सदा चमकता रहता है, एक रस अवस्था, अप्रभावित, सदा दाता की स्टेज भरपूर संपन्न, स्वयं तप कर दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करता है, रोजाना नई ऊर्जा उमंग उत्साह के साथ अवतरित होता है, नो अबसेंट नो डिस्टर्बेंस, सदैव ऊंचाई पर रहता है, किचड़े को भस्म करता है, ताकत प्रदान करता है, विटामिन देता है, कोई भेदभाव नहीं, साइलेंस रहता है, वो अपना कोई ढिंडीरा नहीं पीटता कि मैं सूर्य हूँ मैं सबको दे रहा हूँ, नहीं, साइलेंस उसका कर्तव्य देना तो देता रहता है, भय दूर करता है, डर दूर कर देता है, कभी मुरझाता नहीं है। छोटी मोटी बातें आ जाए हम मुरझाने लग पड़े, इसने ऐसे कह दिया उसने ऐसा कह दिया, अर्थात कौन सी देवी कहते, हीलिंग देवी, देवता भी देवी नहीं देव भी, उससे परे कोई कभी मुरझाता नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं, अहंकार नहीं, कोई डर नहीं, अंधकार को समाप्त कर देता है और हमेशा अपनी शान में रहता है। तो ऐसे हम सब आत्माएं वरदानी मूर्त आत्माएं, हमें भी मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर अपनी ऊंची स्टेज पर संपूर्णता की स्टेज पर स्थित रहकर सारे संसार के अज्ञान अंधकार को साथ साथ अपने भी अज्ञान अंधकार को मिटाते हुए वरदानी मूर्त बनकर रहना है। ओम शांति।
धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा हूँ, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। धरती का सितारा हूँ, देह का उजाला हूँ, सर्व का सहारा, मैं शिव पिता का प्यारा हूँ। न्यारा हूँ निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, न्यारा हूँ तो प्यारा भी हूँ, शीतल हूँ ज्वाला हूँ। दिव्य गुण से निज को नित निखार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं। हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। दूर हर नशे मगर एक नशे में चूर हूँ, मैं खुदाई नूर हूँ, चेतन को ही नूर हूँ। खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, खुशियों से भरपूर दिल में रखे ये गरूर, ठान लूं जो चाहूं तो कर सकता जरूर हूं। संग शिव के स्वर्ग भू पे ला रहा हूं मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, खोल पुतलियों के पट हो, खोल पुतलियों के पट निहार रहा मैं, निहार रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं, तन के भव्य भाल पर विराज रहा मैं।